एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज हम अमेरिकी साहित्य की एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने 2004 में पुलित्जर पुरस्कार जीता और आते ही एक बहस छेड़ दी।
हम एडवर्ड पी जोन्स के उपन्यास द नोन वर्ल्ड की दुनिया में उतर रहे हैं
और इस किताब की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी पहली लाइन में ही है।
हाँ बिल्कुल, ये हमें अमेरिकी गृह युद्ध से पहले के वर्जीनिया में ले जाती है और एक ऐसे आदमी से मिलवाती है जो खुद कभी गुलाम था
लेकिन आज वो 33 गुलामों का मालिक है
और उसका नाम है हेनरी टाउनसेंट, एक अश्वेत।
यही वो बात है जो मतलब दिमाग को झकझोर देती है। हम गुलामी को अक्सर एक सीधी सादी कहानी की तरह देखते हैं,
श्वेत मालिक और अश्वेत गुलाम, एक साफ लकीर।
लेकिन जोन्स इस आसान सी तस्वीर को तोड़कर एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछते हैं।
हाँ, कि क्या होता है जब जुल्म सहने वाला ही जुल्म करने वाला बन जाए? क्या वो इंसान बुरा है या वो पूरा निजाम ही इतना सड़ चुका है
कि उसमें कुछ भी अच्छा बची नहीं सकता?
बिल्कुल, ये उपन्यास किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का एक तरह से एक्सरे है।
तो चलिए हेनरी टाउनसेंट की इस ज्ञात दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं।
कहानी की शुरुआत ही बड़ी अजीब है।
हेनरी की मौत से शुरू होती है।
हाँ, वो सिर्फ 21 साल का है और उसकी मौत के साथ ही वो छोटी सी दुनिया जो उसने बनाई थी वो बिखरने लगती है।
तो सवाल ये उठता है कि ये दुनिया बनी कैसे, मतलब हेनरी इस मुकाम तक पहुंचा कैसे?
ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हेनरी के पास एक हुनर था,
वो बेहतरीन जूते बनाता था
और उस दौर में जूते सिर्फ पैर ढकने की चीज नहीं थे, वो आजादी का, इज्जत का प्रतीक थे,
सामाजिक पहचान का। नंगे पैर होना तो गुलामी की निशानी थी।
बिल्कुल, तो हेनरी का जूते बनाने का हुनर असल में उसकी आजादी की पहली सीढ़ी बनता है।
वो इसी से पैसे कमाकर अपनी आजादी खरीदता है।
यहाँ तक तो कहानी एक प्रेरणा देने वाली लगती है ना।
हाँ, एक आदमी ने अपनी मेहनत से आजादी हासिल की, लेकिन असल ट्विस्ट तो इसके बाद आता है।
आजाद होने के बाद हेनरी मार्गदर्शन के लिए जाता है अपने पुराने श्वेत मालिक विलियम रॉबिन्स के पास
और रॉबिन्स उसे सफलता का रास्ता दिखाता है।
हाँ, और रॉबिन्स की नजर में सफलता का मतलब था जमीन का मालिक बनना
और फिर उस जमीन पर काम करने वाले लोगों का मालिक बनना।
रॉबिन्स के लिए ये दुनिया का सबसे स्वाभाविक नियम था। उसे नक्शे बनवाने का बड़ा शौक था,
अपनी जमीन के, अपने इलाके के।
और वो नक्शे सिर्फ कागज नहीं थे, वो हर चीज पर, हर इंसान पर अपने कंट्रोल को दिखाने का एक तरीका थे। वो अपनी ज्ञात दुनिया को पूरी तरह से काबू में रखना चाहता था
और हेनरी उसका सबसे काबिल शागिर्द इसी फलसफे को अपना लेता है।
वो पहले जमीन खरीदता है और फिर अपना पहला गुलाम खरीदता है, मोजेस।
यहीं से उसका नैतिक पतन शुरू होता है और शायद उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता।
हाँ, और ये फैसला उसे उसके माँ बाप ऑगस्टस और मिल्ड्रिड से हमेशा के लिए दूर कर देता है।
ये किरदार हेनरी के माता पिता मुझे लगता है कि इस उपन्यास की नैतिक रीढ़ हैं।
बिल्कुल, वो भी अपनी आज़ादी खरीद चुके हैं और गुलामी से इतनी नफरत करते हैं कि अपने बेटे के इस कदम को कभी माफ नहीं कर पाते।
वो हेनरी से एक बात कहते हैं, हम उस दुनिया से कुछ नहीं चाहते जो एक गुलाम बनाती है।
ये लाइन ये पूरे उपन्यास के दोगलेपन पर एक तमाचा है।
वो ये नहीं कह रहे कि हम श्वेत लोगों की दुनिया से कुछ नहीं चाहते, वो कह रहे हैं
उस सिस्टम से कुछ नहीं चाहते जो इंसान को चीज बना देता है।
आपने बिल्कुल सही कहा, वो सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हेनरी उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर अपनी पहचान बनाना चाहता है।
और यहीं पर उसकी पत्नी कैलेडोनिया की कहानी आती है।
हेनरी की मौत के बाद वो उस बागान की मालकिन तो बन जाती है पर
उसे इस क्रूर दुनिया को चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। वो दुख और उलझन में फंसी है और सब कुछ उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है।
और इस फिसलती हुई दुनिया में सबसे अहम किरदार है मोसेस।
हाँ, मोसेस, वो हेनरी का पहला गुलाम है, उसका सबसे भरोसेमंद फोरमैन।
उसके मन में एक अजीब कश्मकश चलती रहती है।
एक तरफ मालिक के प्रति वफादारी का भाव है, शायद इसलिए कि उसका मालिक भी अश्वेत है,
और दूसरी तरफ आजादी की एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं।
हेनरी और मोसेस का रिश्ता वो इस उपन्यास के दिल में है ना।
बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मालिक और गुलाम के रिश्ते में कभी सच्ची वफादारी हो सकती है, चाहे मालिक का रंग कोई भी हो?
नहीं हो सकती, और लेखक इसी बात को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। उपन्यास की कहानी वो सीधी नहीं चलती।
हाँ, कथावाचक हमें बार बार समय में आगे पीछे ले जाता है,
कभी हेनरी का अतीत दिखाता है कि ये दुनिया कैसे बनी,
और कभी अचानक भविष्य में ले जाकर बता देता है कि 40 साल बाद किसी किरदार की मौत कैसे होगी।
ये तरीका बहुत असरदार है, इससे कहानी का सस्पेंस तो खत्म हो जाता है,
लेकिन
उसकी जगह एक भारी भरकम एहसास पैदा होता है, हाँ, जिसे शायद ऐतिहासिक अनिवार्यता कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये किरदार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इतिहास की एक बड़ी दर्दनाक लहर उन्हें अपने साथ बहाकर ले जा रहे हैं।
और उनका अंत पहले से तय है?
बिल्कुल। और हेनरी की मौत के बाद ये बिखराव तेज हो जाता है, बागान पर अराजकता छा जाती है,
कैरेडोनिया लाचार है।
और जैसे ही सत्ता का केंद्र खाली होता है, मोसिस जैसे गुलाम अपनी बेड़ियों की सीमाओं को परखना शुरू कर देते हैं।
वो भागने की कोशिश करते हैं,
और मोसिस के भागने की कोशिश और पकड़े जाने पर उसे जो भयानक सजा मिलती है, वो उदार मालिक के खोखले मुखौटे को नोच कर फेंक देती है।
मतलब हेनरी शायद खुद को विलियम रॉबिन से बेहतर मालिक समझता होगा।
बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उसके निजाम को चुनौती मिलती है, वो भी उसी हिंसा और आतंक का सहारा लेता है।
सिस्टम व्यक्ति की नीयत से ज्यादा ताकतवर साबित होता है।
हर विरोध का जवाब सिर्फ और सिर्फ हिंसा है।
अंत में हेनरी टाउनसेंड की बनाई हर चीज मिट जाती है।
बागान बिक जाता है, गुलाम बेच दिए जाते हैं या भाग जाते हैं, कैलेडोनिया सब कुछ खो देती है।
उसकी बनाई ज्ञात दुनिया एक भ्रम साबित होती है,
एक सड़ी हुई नींव पर टिकी हुई।
तो जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं, तो ये सिर्फ एक दुखद कहानी से कहीं ज्यादा है। ये कुछ बहुत गहरे सवाल उठाती है।
पहला और सबसे बड़ा सवाल तो शक्ति यानी पावर के स्वभाव को लेकर है।
उपन्यास ये कहता है, किसी इंसान का मालिक बनना एक ऐसा जहर है जो मालिक की आत्मा को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है।
चाहे उसका रंग या उसके शुरुआती इरादे कुछ भी रहे हों, हेनरी इस जहर का सबसे दुखद शिकार है।
और दूसरा सवाल आजादी के असली मतलब पर है।
हेनरी कानूनी तौर पर तो आजाद था, पर क्या वो दिमागी तौर पर कभी आजाद हो पाया?
जब वो अपनी सफलता को, अपनी पहचान को अपने पुराने मालिक की नकल करके ही बना पाता है, तो क्या ये सच्ची आजादी है
या ये दिमागी गुलामी की ही एक और शक्ल है?
ये बहुत गहरा सवाल है। ये उपन्यास हमें ये भी दिखाता है कि ये निजाम कैसे हर किसी को अपने जाल में फंसा लेता था।
ये सिर्फ श्वेत बनाम अश्वेत की लड़ाई नहीं थी। कहानी में एक शेरिफ है, जॉन स्किफिंगटन।
हाँ, वो दिल से गुलामी के खिलाफ है, लेकिन उसकी नौकरी ही उस निजाम को बनाए रखने की है।
वो भी उस सिस्टम का एक मजबूर मोहरा है। ये कहानी की नैतिक जटिलता को दिखाता है।
इसमें कोई भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है।
हर कोई उस सिस्टम के अंदर सांस ले रहा है और उसी के नियमों से बंधा है।
और इसीलिए ये उपन्यास आज भी इतना जरूरी लगता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता के निजाम आज हमारी जिंदगी में हमारे नैतिक फैसलों को कैसे शक्ल देते हैं।
क्या हम भी सफलता के उन पैमानों के पीछे तो नहीं भाग रहे जो किसी अन्यायपूर्ण सिस्टम ने बनाए हैं?
सही कहा। द नोन वर्ल्ड पढ़ना एक बेचैन कर देने वाला अनुभव है। यह आसान जवाब नहीं देता।
एक पाठक के तौर पर हेनरी के लिए गुस्सा भी आता है और उसके लिए दुख भी होता है।
ये इतिहास के उस बोझ को महसूस कराता है जिसे अक्सर आसान कहानियों में समेट दिया जाता है।
यह उपन्यास सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये मानवीय स्थिति पर एक कालातीत ध्यान है।
ये हमें एक आईना दिखाता है और पूछता है कि शोषित और शोषक के बीच की लकीर कितनी पतली हो सकती है।
और शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी सड़े हुए सिस्टम में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना वो लगभग नामुमकिन है।
असली लड़ाई व्यक्ति से नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम से लड़नी पड़ती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।